Hey everyone, I am Shivani Singhi, digital creator, podcaster, founder of Mapreneur and your host. Aaj hamare saath hai Dr. Hina. She is gynecologist, laparoscopy surgeon at Sohana Multispecialist Hospital, Mohali, Punjab. She did infertility and ultrasound training with Dr. Archana Basir, ex-vice president FOGSI in Indore. और इन्होंने मोर देन 1000 लैप्रोस्कोपी सर्जरी की हैं. वेलकम टू द शो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में. प्लीज आप आपके बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन दें जिससे हमारे लिसनर्स आपके बारे में और जाने.
थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन. मैं डॉक्टर हिना ढींगरा हूँ. मैं एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी पिछले मोर देन 5 years से चंडीगढ़ मोहाली रीजन में एज अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड हाई रिस्क इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. मेरी ट्रेनिंग इन इनफर्टिलिटी एंड अल्ट्रासाउंड विद डॉक्टर अर्चना बसेर, जो कि पास्ट एक्स वाइस प्रेजिडेंट फॉक्सी रह चुके हैं, उनके साथ हुई है पिछले 2 साल. एंड इनफर्टिलिटी के साथ साथ मेरा जो फोटे है दैट इज लैप्रोस्कोपी, जिसमें मेरी ट्रेनिंग वर्ल्ड रिनाउंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर हफीज रहमान एंड डॉक्टर नितिका त्रेहान के साथ मेरी ट्रेनिंग हुई है. उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने जैसे मेंशन किया, मैं काफी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्पेशली आज का जो हमारा टॉपिक है फाइब्रॉइड रिलेटेड, कि फाइब्रॉइड का क्या इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में एंड प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट होता है फाइब्रॉइड्स की तरफ, उसमें मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है. हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट हमेशा बना रहा है.
ओके, तो आज हम फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करने वाले हैं. जैसे आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि व्हाट इज फाइब्रॉइड्स?
सो बेसिकली फाइब्रॉइड्स कुछ नहीं, बस जैसे यूट्रस के कुछ लम्प्स या फिर आप बोले कि यूट्रस की कुछ रसौलियां ट्यूमर लाइक ग्रोथ होते हैं, जो कि यूट्रस के मसल टिश्यू से ग्रो करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये कैंसरस ग्रोथ नहीं होती हैं. ये बिल्कुल स्मॉल, एक मटर के दाने जितने साइज से लेकर वाटरमेलन इवन उतने बड़े साइज तक के भी हो सकते हैं. ये फाइब्रॉइड्स या ये जो ट्यूमर लाइक ग्रोथ्स होती हैं, ये यूट्रस की वॉल के बाहर, यूट्रस की वॉल के अंदर और इनफैक्ट यूट्राइन कैविटी, जहां पे नॉर्मली हम बोलते हैं कि बच्चा ठहरता है, बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा ठहरता है, इवन वहां पे भी ग्रो कर सकते हैं.
ओके, जैसे आपने बताया कि वाटरमेलन साइज, तो वो साइज बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है.
डेफिनेटली, बट इसकी सबसे एक खास बात जो है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको फाइब्रॉइड्स होते हैं, मोस्टली दे आर एसिम्प्टोमैटिक, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको फाइब्रॉइड्स हैं, एंड उसका साइज इसलिए इतना बढ़ जाता है, मतलब इतना वाटरमेलन साइज तक पहुंच जाता है, बिकॉज मोस्टली वो एसिम्प्टोमैटिक रहते हैं. सीधी बात है ना कि अगर किसी को कोई किसी चीज की भी कोई बीमारी का अगर कोई सिम्टम है तो वो डॉक्टर के पास जल्दी जाएगा, बट अगर किसी बीमारी का कोई सिम्टम ही नहीं है, वो अगर हमारी बॉडी में ग्रो कर रहा है, पेशेंट को पता ही नहीं चल पा रहा है, तो इसीलिए वो इतनी आगे जो है ग्रोथ तक पहुंच जाता है या इतनी साइज तक पहुंच जाता है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स एसिम्प्टोमैटिक रहते हैं एंड उनमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स डेवलप हो चुके होते हैं. इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये इतने कॉमन है स्पेशली इन एशियन एंड कॉकेशियन पॉपुलेशन दैट अप टिल द एज ऑफ 35 इंडियन पॉपुलेशन में भी 40-60% वुमेन दे हैव फाइब्रॉइड्स, एंड अप टिल द एज ऑफ 50 ऑलमोस्ट 70-80% वुमेन दे हैव फाइब्रॉइड्स, बट मोस्टली बिकॉज वो एसिम्प्टोमैटिक होते हैं इसलिए उनका डायग्नोसिस लेट होता है.
ओके, तो ये कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी सस्पेक्ट कि उन्हें फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है?
ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा. जैसे कोई भी पेशेंट अगर रूटीन चेकअप के लिए आए, अगर उन्हें अल्ट्रासाउंड हम एडवाइस करते हैं, उसमें हम अल्ट्रासाउंड में ये पिकअप कर सकते हैं, इवन एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स में हम कर सकते हैं. अदरवाइज जैसे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कुछ उनके सिम्टम्स होते हैं, जैसे पीरियड्स इररेगुलर होना, महावारी ज्यादा आना, ब्लड क्लॉट्स ज्यादा निकलना पीरियड्स के दौरान, नॉर्मली कोई भी फीमेल जो होती है उनका जो भी एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 5 to 7 days के बीच होता है, एंड हर महीने एटलीस्ट 28 to 30 days, 35 days की साइकिल के बाद वो पीरियड आता है। एक दिन में कोई भी महिला शुरू के 4 या 5 दिनों में 3 से 4 पैड चेंज करते हैं, बट इसमें से कोई भी अगर लिमिट अगर ज्यादा एक्सीड करती है, दैट मीन्स अगर 7 days से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक दिन में 4 या 5 से पैड ज्यादा चेंज करने पड़ रहे हैं, ब्लड क्लॉट ज्यादा फ्लो हो रहे हैं, या पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे हैं, या पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। सेकेंड साइन विच इज प्रेजेंट इज कि नीचे पेल्विक एरिया में या लोअर एब्डोमेन में हमेशा हेवीनेस फील होना, कुछ पेट में दर्द होना। जब बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, पेट पे हाथ रख के वो खुद फील कर सकते हैं कि उनको कुछ हार्ड ऐसे ग्रोथ सी फील होती है कि विच इज नॉट यूजुअल। जो पेट किसी का जैसे सॉफ्ट होता है उनकी एक हार्ड ग्रोथ सी फील होती है, कुछ वैसा होना। या फिर जब फाइब्रॉइड जब जिनका साइज बहुत बढ़ जाता है तो आगे पेशाब की थैली पे वो कंप्रेशन देते हैं, जिसकी वजह से पेशाब की प्रॉब्लम्स होना, बार बार पेशाब आना, या पेशाब रुक जाना, या पीछे आंतों पे अगर उनका प्रेशर पड़ता है, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो पेशेंट्स कई बार कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। एंड इवन विद दैट सिंपल कॉन्स्टिपेशन जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उनके यूट्रस में हमें फाइब्रॉइड्स मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, बिकॉज फाइब्रॉइड मेनली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी 20 से 40 साल की महिलाओं में प्रेजेंट होते हैं, तो कई बार वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, मतलब उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, एज इन वो बच्चा करने में असमर्थ होते हैं। तो उनमें रूटीन चेकअप्स में हमें पता चलता है दैट उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो जो प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं उनमें कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ब्लीडिंग हो जाना, कई बार पेन हो जाना, या अबॉर्शन या मिसकैरेज जिसे हम बोलते हैं, उनके कारण कई बार फाइब्रॉइड्स होते हैं।
तो इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं जिससे हमें पता चले कि हमें ये वाली प्रॉब्लम है।
हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स इरेगुलर होना, पेन, यूरिन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होना, ये किसी भी फीमेल में अगर प्रेजेंट है तो उनको एक जनरल चेकअप के लिए, एक गायनेकोलॉजिकल चेकअप के लिए डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में अगर मैं डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स यानी जो हमारे 9 महीने होते हैं उनके अलग अलग हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में पेशेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं ब्लीडिंग के साथ, पेन के साथ। पेन सिवियर हो सकता है बिकॉज यूजली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं दे फॉलो अ रूल ऑफ 1/3, दैट मीन्स 1/3 ऑफ द फाइब्रॉइड्स वो प्रेगनेंसी में ग्रो करते हैं, उनका साइज बढ़ता है। 1/3 ऑफ द फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनका साइज सेम रहता है, एंड 1/3 ऑफ द फाइब्रॉइड्स का साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम होता है। तो अगर इनका साइज जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बिकॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीक पे होता है, तो साइज इनके बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पर पेन बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड ऐसी जगह पर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूट्राइन कैविटी, दैट मीन्स यूट्रस की जो कैविटी है उसके अंदर फाइब्रॉइड अगर लोकेटेड है, तो अगर साथ में बेबी भी ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद मोस्टली पेशेंट्स पेन के साथ ही प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड अगर बड़ा है तो वो ट्विस्ट हो सकता है, उसके अंदर डीजनरेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड इकट्ठा हो सकता है, जिसे हम रेड डीजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड भी बोलते हैं। एंड पेशेंट्स दे प्रेजेंट विद एक्यूट पेन इन एब्डोमेन। सेकेंड, उसमें भी मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है क्योंकि जो बच्चेदानी है उसके अंदर फाइब्रॉइड भी ग्रो कर रहा है, उसके अंदर बेबी भी ग्रो कर रहा है। एंड अगर फाइब्रॉइड का साइज इक्वलेंट तरीके से अगर बढ़ रहा है तो बेबी का उस टाइम पे उसका वजन कम होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। उसी तरीके से प्री टर्म डिलीवरी होने के भी चांसेस होते हैं, बिकॉज एक बच्चेदानी की एक लिमिट होती है कि जितना उसके अंदर एक इतने किलो का बच्चा आ सकता है या इतने किलो का या इतने ग्राम का फाइब्रॉइड आ सकता है, उससे कोई भी लिमिट अगर एक्सीड करती है, मानिए जैसे अगर फाइब्रॉइड भी प्रेजेंट है, बेबी भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए प्रीटर्म लेबर में जाने के चांसेस होते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं, जैसे जो भी प्लेसेंटा या जिसे हम आवल बोलते हैं, जो कि बच्चे को खाना पहुंचाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो प्लेसेंटा कई बार अपनी जगह से टेयर ऑफ हो जाता है या उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स, या प्लेसेंटा गलत जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही डिलीवरी के बाद या ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि फाइब्रॉइड कई बार बच्चेदानी के निचले हिस्से में प्रेजेंट हो सकता है, तो नॉर्मल डिलीवरी कई बार नहीं पॉसिबल हो पाती बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स, एंड जिसके लिए सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। कई बार फाइब्रॉइड की लोकेशन ऐसी होती है कि बच्चे का सर नीचे नहीं आ पाता, जिसकी वजह से कई बार बच्चा बच्चे माँ के
में
उल्टा होता है, ट्रांसवर्स पोजिशन में हो सकता है, एंड ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड बहुत वैस्क्युलर होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है एंड ऑपरेशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं।
ये भी चीज हो सकती है कि जैसे बेबी बड़ा होता है और जैसे फाइब्रॉइड का साइज छोटा है, लेकिन क्या उसके साथ ही वो फाइब्रॉइड का साइज भी बढ़ता है, क्या ये पॉसिबल है?
इट इज पॉसिबल कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे एडवांस करती है तो फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनका साइज भी धीरे धीरे बढ़ सकता है। बट अगर मैं जनरल पॉपुलेशन में देखूं, मोर देन 70% वुमेन जिनमें फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनके फाइब्रॉइड्स साइज अगर बढ़ता भी है तो भी वो बच्चे की ग्रोथ पे ज्यादा असर नहीं करते, क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड होता है इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता है। कई बार जब फाइब्रॉइड ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, प्रेगनेंसी होने के पहले ही बहुत बड़ा होता है, तब उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ओके, और क्या फाइब्रॉइड्स के कुछ टाइप्स भी हैं?
हाँ जी, फाइब्रॉइड्स तीन टाइप के हो सकते हैं। जो फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी की जो कैविटी है उसके अंदर ग्रो करते हैं, उनको हम सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। वो फाइब्रॉइड्स मेनली इनफर्टिलिटी या फिर कंसीविंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, एंड वो फाइब्रॉइड्स यूजली पेशेंट की ब्लीडिंग के कारण होते हैं। और अगर विद सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स पेशेंट्स कंसीव करते हैं तो वो एक बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है, क्योंकि वो फाइब्रॉइड्स जब बच्चेदानी के अंदर ग्रो करेंगे या कैविटी के अंदर ग्रो करेंगे तो वो बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स जो बच्चेदानी की जो मसल वॉल होती है उसके अंदर होते हैं, जिन्हें हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स भी बोलते हैं। एंड थर्ड फाइब्रॉइड्स जो बच्चेदानी के बाहर यानी यूट्रस के बाहर ग्रो करते हैं, उन्हें हम सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं।
क्या रीजन की वजह से, या हम कह सकते हैं कि इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं?
मेनली अगर मैं रिस्क फैक्टर्स इसमें देखूं तो मल्टी फैक्टोरियल हो सकते हैं, मेनली बिकॉज हमारे आजकल लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हो चुके हैं, प्लस अगर सबसे पहले देखें तो जेनेटिक्स, स्पेशली जैसे एशियन पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एशियन पॉपुलेशन एट रिस्क, एंड उसी तरीके से जैसे अफ्रीकन होते हैं उनमें भी फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो दीज आर जीन्स विच वी कैनॉट चेंज। सेकेंड इज द लाइफ स्टाइल, जिसे हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। आजकल हमने देखा होगा कि महिलाएं लेट मैरिज कर रही हैं, स्पेशली वो चाइल्ड बेयरिंग या फिर बेबी प्लानिंग थोड़ा लेट करते हैं। सो इट्स अ रूल ऑफ नेचर कि अगर यूट्रस के अंदर अगर बेबी नहीं ठहरा है तो कोई ना कोई और ग्रोथ उसके अंदर होती है, दिस इज नेचुरल। सो बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ लेट मैरिजेस, बिकॉज ऑफ लेट चाइल्ड बेयरिंग, इसका थोड़ा सा इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है, एंड मेनली बिकॉज हमारे लाइफ स्टाइल में एल्कोहल एंड स्मोकिंग ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से भी जो जेनेटिक चेंजेस आए हैं वो भी फाइब्रॉइड के इंक्रीज्ड कारणों में से हैं।
ओके, एक चीज इसमें मैं और पूछना चाहती हूँ, मैं इसमें आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ। आपने बताया कि अभी जिस तरह से जिस तरह की लाइफ स्टाइल है, लेट मैरिजेस होना, लेट चाइल्ड प्लान करना, राइट
राइट
अगर आपके अकॉर्डिंग आप बताना चाहें वुमेन्स को किन टाइम पीरियड में मैरिज करना चाहिए, अगर मैरिज अगर लेट हुआ है तो किस टाइम पीरियड पे बेबी प्लान करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाइफस्टाइल है.
वैसे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट अदरवाइज अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इसका आंसर मैं दूंगी, टू ईच हिज ओन. एज इन हर फीमेल इंडिपेंडेंट है, वो अपने लिए अपनी लाइफ खुद चूज कर सकती है. स्पेशली आजकल हम ये बोलते हैं कि महिलाओं एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, एंड फीमेल्स शुड ऑल्सो गेट द सेम अपॉर्चुनिटी इन स्टडीज एंड अदरवाइज उनके करियर में भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है. बट एज अ डॉक्टर अगर आप मुझसे पूछेंगे, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट 30 years से पहले, बिफोर यू टर्न 30 या मैक्सिमम 35, जैसे हम एल्डरली प्राइमी बोलते हैं, मतलब एक एज उससे पहले अगर हमारी प्रेगनेंसी होती है तो दैट इज कंसिडर्ड अ लो रिस्क प्रेगनेंसी, अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को रूल आउट करें.
ओके, मैंने इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन किया क्योंकि अगर सारे विमेन्स को क्लियर हो जाए. एक चीज और है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम भी आई थिंक 70% विमेन्स में होता है, राइट?
यस, यू आर वेरी राइट. एंड पीसीओडी इज ऑल्सो लाइक अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नाउअडेज. इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो हमने आजकल एडॉप्ट कर लिया है, हमारा सिडेंटरी लाइफस्टाइल, जो वेस्टर्नाइजेशन हमारे फूड का, हमारे कल्चर का हो चुका है, पीसीओडी एक्चुअली उसी का ही रिजल्ट है.
यस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग.
राइट,
ओके. अब मैं जैसे अब हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स को लेकर, क्या इससे कैंसर होने के भी चांसेस हैं?
फाइब्रॉइड, सबसे पहले हमारे लिए ये बात जानना बहुत बहुत जरूरी है कि फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, ये कैंसर नहीं है. ये फाइब्रॉइड जो होते हैं ये यूट्रस के अंदर ट्यूमर लाइक ग्रोथ्स है, मतलब ट्यूमर जैसे, ये मसल के कुछ, जैसे आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था कि मसल लंप्स होते हैं जो कि यूट्रस में प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये कैंसरस नहीं होते. इनका कैंसर में कन्वर्ट होने के जो चांसेस हैं लेस देन 0.1% होता है.
ओके, अगर जैसे किसी को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो वो कैसे जान सकता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और जल्दी से उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए?
अगर सिम्टम्स उनको पीरियड्स में कोई भी इरेगुलरिटी फील हो रही है, कंसीविंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हमेशा पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस बनी रहती है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर एक सिंपल एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या एक अल्ट्रासाउंड जो कि इंटरनल अल्ट्रासाउंड कहलाता है, उसकी मदद से फाइब्रॉइड्स, 90% फाइब्रॉइड्स जो हैं दे कैन बी डायग्नोस्ड. और अगर किसी में सस्पेशन होता है, या फिर कई बार फाइब्रॉइड्स बहुत मल्टीपल हो सकते हैं जो कि छोटे साइज से बड़े साइज तक हो सकते हैं, तो फाइब्रॉइड मैपिंग के लिए कई बार MRI करने की जरूरत पड़ती है.
Hey guys, आज के लिए इतना ही. हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में Part 2, जिसमें बहुत सारी कन्वर्सेशन होने वाली है और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए. सो प्लीज जरूर सुने, एंड जितने भी डाउट्स है आप सभी के क्लियर होंगे. और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वॉइस मैसेज के थ्रू आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है. शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.